23.
इससे पहले कि बोस्निया और सोमालिया के मुर्दे दस्तक देते और उधर ब्राजील और बोलीविया में मारे गए निर्दोष अपनी दास्तान सुनाते, भवानी सेनगुप्त ने उन्हें टोका। हाहाकार तो है, पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हिंसा, हत्या, कष्ट, उत्पीड़न, यातना, बेईमानी, बदकारी के सैलाब उमड़ रहे हैं। खुद भारत में रक्त के तालाबों के कमल उगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भी है जो शुभ है। हाँ, अदीब ने कहा, जो हमारी अंतरात्मा की रक्षा भी कर रहा है, जो घटित हो रहा है पर घटित होता हुआ दिखाई नहीं देता, जो सुनाई पड़ता है पर सुना हुआ प्रतीत नहीं होता, जो सोचा जा रहा है पर सोचा हुआ मालूम नहीं पड़ता, जो समझा जाता है पर समझ में नहीं आता। यही हमारे समय की त्रासदी है, क्योंकि हम सब मूल्यबोध के बावजूद मूल्यहीनता की चपेट में हैं। इसीलिए तो मैं साउथ अफ्रीका, इसराइल और फिलिस्तीन से ईरान होता हुआ लौटा हूं। ट्यूनिस में मैं यासर अराफात से भी मिला और इसराइल में रॉबिन और पेरेस से भी। यहूदियों और फिलिस्तीनियों ने अपने अपने पाकिस्तानों की दीवारों को झुकाकर आदमी को ये मोहलत दी है कि वे एक दूसरे का मानवीय सच देख सकें और मनुष्य की मौलिक स्वतंत्रता को पहचानने की कोशिश कर सकें। यहूदी और फिलिस्तीनी मानस ने एक दूसरे की धड़कनों को समझा है और बंदूकें, मिसाइलें और इत्तेफादा से उड़ते हुए पत्थर थम गए हैं। ये एक निर्णायक कदम है। ये समझौता हो गया है कि यहूदियों के इसराइल में रहने के हक को फिलिस्तीनी मंजूर करेंगे और यहूदी उन्हें गाजा पट्टी और पश्चिमी तट में खुद अपना देश स्थापित करने और हुकूमत चलाने की गारंटी देंगे। राजधानी जेरिको होगी और जेरूशलम गोलान पहाड़ियों का मसला बाद में तय होगा, भवानी सेनगुप्त बड़े उत्साह से बता रहे थे। और उधर दक्षिण अफ्रीका में 340 वर्षों से चल रहे वर्णभेदी साम्राज्य का अंत हुआ है।
पृष्ठ 180।
नेल्सन मंडेला ने अंतिम विजय हासिल की है और लंबी लड़ाई में परास्त होकर गोरों की दुनिया में रंगभेद की समाप्ति की घोषणा कर दी है। और अभी मैं तेहरान से लौटा हूं। ईरान की इस्लामी क्रांति को पश्चिम ने दानवी, भयानक और मानव विरोधी घोषित किया था और वे लगातार प्रचार करते रहे कि वहां पर मानव मूल्यों की हत्या कर दी गई है। वहां नृशंस इस्लाम का उदय हुआ है। मैं खुद वहां गया ये देखने कि पश्चिमी देश पूरब के देशों को किस चश्मे से देखते हैं। ईरान को देखने का उनका चश्मा भी गलत है, इसीलिए पश्चिम वाले ईरान की इस्लामी क्रांति को आत्मसात नहीं कर पाए। आयतुल्ला खुमैनी की इस्लामी क्रांति ने ईरान जैसे सभ्यता संपन्न देश को फिर एक बार उसकी धुरी दे दी और आज अपनी धुरी पर लौटकर ईरान अपने क्षेत्र की दोनों बड़ी सभ्यताओं भारत और चीन के प्रति अक्षय शांति और मैत्री का हाथ बढ़ा रहा है। तभी शिवसेना का आदमी बीच में बोल उठा, ये मत भूलो कि मुसलमान बर्बर हैं, वो अपने धर्म वालों को भी नहीं छोड़ते तो वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं। ईरान और इराक दो मुसलमान देश 8 साल तक लड़ते रहे। हाँ, लेकिन क्या महाभारत के दोनों लड़ाकू वंश पांडव और कौरव एक ही धर्म के मानने वाले नहीं थे? वे भी तो लड़ते रहे। इसलिए धर्म को बीच में मत घसीटो, भवानी सेनगुप्त की बात सुनो ताकि कुछ राहत मिले। तभी बोस्निया के मुसलमानों का हाहाकार आने लगा। अदालत के दरवाजों पर दस्तकों की बौछार होने लगी। चीखों और कराहों से सारा माहौल भर गया। मुसलमान औरतें अपनी इज्जत लूटे जाने की दास्तानें लेकर हाजिर हुईं और सर्बों तथा क्रोट लोगों ने जिन मुसलमानों के साथ बर्बर अत्याचार किए थे वे लगातार चीख चिल्ला रहे थे, क्या हमारी बात सुनने वाला कोई भी नहीं है? कोई भी देश क्या हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों का प्रतिकार नहीं कर सकता? हम बोस्निया में भूखे मर रहे हैं, हमारी औरतों के साथ लगातार अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, हमारे बेटे घरों से निकाल निकाल कर मारे जा रहे हैं, हमें बेघर और बेइज्जत किया जा रहा है और सारे देश खामोश हैं। बोस्निया का एक मुसलमान मुर्दा अपने मुल्क की हालत बयान कर रहा था, लेकिन अब हालत कुछ ठीक है। युगोस्लाविया के क्रूट सर्ब और मुसलमान एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए सबने विभाजन मंजूर कर दिया है। भवानी सेन गुप्ता ने बड़ी तकलीफ से कहा, युगोस्लाविया की तीनों जातियां समस्त क्षेत्र का बंटवारा करके स्वतंत्र देश के रूप में अलग अलग रहने को राजी हो गई हैं। क्या कह रहे हैं आप? यानी युगोस्लाविया में तीन पाकिस्तान बन गए? वहां जातियां तो दो ही हैं, सर्ब और क्रोट। तीसरा तो इस्लाम धर्म है, उसके मानने वाले मुसलमान हैं, वे कोई जाति तो नहीं है। वे क्रोट भी हो सकते हैं और सर्ब भी। यानी युगोस्लाविया में भी वही अनुदारता, घृणा और नफरत कारगर हो गई है।
पृष्ठ 181।
अदीब ने तकलीफ से कहा, लेकिन इस बार तो क्रिश्चियंस ने मुसलमानों को खुद अपने से अलग किया है। वे मुसलमानों पर भयानक अत्याचार कर रहे थे। सराजेवो शहर को उन्होंने अपने बमों से खंडहर में बदल दिया है। मुसलमानों का जिंदा रहना मुश्किल कर दिया है। उनकी औरतों को ईसाई उठा ले जाते हैं। उनके साथ वे इतना गर्हित सलूक करते हैं जितना पाकिस्तानी फौजों ने बांग्लादेश की औरतों के साथ नहीं किया था, उतना तो जापानी फौजों ने कोरियन औरतों के साथ भी नहीं किया था। औरतों के साथ बदसलूकी, जिना और पाशविक अत्याचार का इससे जघन्य उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। और फिर वहां तो सब उल्टा हुआ है। इस बार तो सर्ब और क्रोट ईसाइयों ने अपने ही देश के मुसलमानों को अपना पाकिस्तान बनाने पर बाध्य किया है, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। यह भी एक जघन्य काम है। मनुष्य का मनुष्य के साथ रहने से इनकार करना एक मानवीय जुर्म है। धर्म बदलने से इतिहास की जड़ें नहीं बदलती। अदीब अभी कह ही रहा था कि गाजियाबाद के देहरा गांव की रिपोर्ट लेकर विशेष संवाददाता ओम प्रकाश हाजिर हुए। अदीब का दिल धड़कने लगा। ओम प्रकाश को देखते ही अदीब ने गहरी सांस लेकर पूछा, क्यों भाई, हिंदुस्तान के गाजियाबाद में फिर कोई खून खराबा या मारकाट हुई है क्या? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं ऐसी रपट लाया हूं जिससे आपको, दुनिया की तमाम आहत, संकुल और व्याकुल आत्माओं को कुछ राहत मिलेगी। दुनिया जानती है, राजपूतों और मुगलों के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल काल के उसी दौर की कहानी कहता है गाजियाबाद जिले का देहरा गांव। देहरा मुसलमान राजपूतों का गांव है। ये सिसोदिया हैं और महाराणा प्रताप के वंशज ही नहीं, उनके कुल के हैं। इनका धर्म परिवर्तन औरंगजेब के जमाने में हुआ। ये मुसलमान राजपूत अपने पूर्वज महाराणा प्रताप की मूर्ति अपने गांव में स्थापित कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि धर्म परिवर्तन से रक्त नहीं बदल जाता। वे अपना परिचय दोहरा मानते हैं कि वे केवल मुसलमान नहीं हैं, वे मुसलमान राजपूत हैं। 60 गांवों के साठे में वे 8.5 गांव में सिसोदिया मुसलमान हैं, बाकी में हिंदू सिसोदिया, लेकिन ये सभी अपने आप को एक ही रक्त और एक ही वंश का मानते हैं। इनके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के साथ हुई लड़ाई में ये राजस्थान से यहां आए थे। यहीं इन राजपूतों का डेरा पड़ा था। इसी डेरा को आज देहरा कहते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिसोदिया राजपूतों के लिए देहरा एक वंशगत केंद्र बिंदु है।
पृष्ठ 182।
साठे में कुल 8.5 गांव मुसलमानों के हैं, पर सबके लंबरदार मुखिया हैं मेहर अली राजपूत। वे कहते हैं, धर्म परिवर्तन के कारण जरूरत पड़ी तो मंदिर की दीवार के सहारे ही हमने मस्जिद खड़ी कर दी है। आज भी मुसलमान बहन अपनी संतान की शादी के समय भैया को भात लाने के लिए बुलाने जाती है तो यही लोग गीत गाती है, भैया रघुबीर भात हमारो लइयो। इस मुसलमान बहन के होंठों पर रघुबीर उसकी संस्कृत का शब्द है, विधर्म का नहीं। अदालत आलिया दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर तक बीच बीच में राजपूतों के विभिन्न कुलों के गांव फैले हैं। हर कुल से कुछ गांव मुसलमान हुए हैं। साठे के बगल में ही 84 है तोमर हिंदू मुसलमानों के 84 गांव। बगल में 12 गांव निर्वाण राजपूतों के हैं, 6 हिंदू और 6 मुसलमान। यही स्थिति इस क्षेत्र के त्यागियों, गुजरों और चौधरियों की भी है। इन राजपूतों ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी संस्कृत को तिरस्कृत नहीं किया है। यही स्थिति उधर पश्चिम में अलवर राजस्थान तक फैले मेवाती मुसलमानों की है। वे मुसलमान हैं पर अपनी पुरातन संस्कृति और लोक प्रथाओं से अब भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी संस्कृति पाकिस्तानों के निर्माण के लिए जगह नहीं देती। संस्कृति अनुदार नहीं, उदार होती है। वो मरण का उत्सव नहीं मनाती, वो जीवन के उत्सव की अनवरत श्रृंखला है। इसी सामासिक संस्कृति की जरूरत हमें है, क्योंकि वो जीवन का सम्मान करती है। हुजूर, यही कोशिश तो मैंने की थी। एक बड़ी शाइस्ता और गूंजती हुई आवाज सामने आई। सामने एक बेहद खूबसूरत शहजादा खड़ा था। उसे देखते ही अदालत में मौजूद औरंगजेब एकाएक चौंका। दारा शिकोह, तुम? हाँ, मैं। चारों तरफ एक अजीब सा हैरानी भरा सन्नाटा समा गया। खचाखच भरी अदालत दारा शिकोह को देखती ही रह गई। चारों तरफ अजीब सी अनुगूंजें भरने लगीं। कुछ आवाजें इस्लामी दरवेशों की थीं, अजानों की थीं, और उन्हीं के साथ बौद्ध प्रार्थनाओं, ईसाई क्वायर की और उन्हीं से मिली जुली मंदिरों के घंटों और पूजा की थीं। युद्धों की आवाजें भी इन्हीं में गडमड हो रही थीं और मरते कटते सिपाहियों की चीतकारें भी उसी में शामिल थीं। खबर मिलते ही बाबर अपने बदनसीब परपोते दारा शिकोह को देखने खास तौर से आया था। वो बहुत प्यार से अपने वंशजों को देख रहा था, खास तौर से दारा शिकोह को। उस वक्त आकाश में सतरंगी इंद्रधनुष खिले हुए थे। अदालते आलिया, मैंने यही चाहा था कि भारत में समझदारी और सहिष्णुता की एक नई संस्कृति जन्म ले, वो संस्कृति जिसे सूफी संतों ने मंजूर किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी हमारे मुगल वंश के संरक्षक संत थे।
पृष्ठ 183।
मैं उन्हीं का मुरीद था। मेरी बहन जहां आरा भी उन्हीं की मुरीद थी। उसने तो मुनीसुल अरबा नाम की ख्वाजा की जीवनी भी लिखी थी। दारा भी बोल ही रहा था कि औरंगजेब ने उसे टोका, ये सरासर गलत है। कंधार से लौटते हुए ये लाहौर के बाबा लाली का चेला बना था, फिर बाद में ये लाहौर के फकीर मियां मीर का शिष्य हो गया था। इसकी बीबी नाजरा बेगम भी उनकी मुरीद बन गई थी। मियां मीर कादरिया संप्रदाय का सूफी था, संत अब्दुल कादिर जिलानी का शिष्य। ये उसी संप्रदाय में दीक्षित हुआ और खुद को कादरी और हनफी मानने लगा था। हां, लेकिन सूफी सूफी में भेद कहां था? और फिर अब्बा हुजूर भी तो मियां मीर को अपनी अकीदत पेश किया करते थे, और मैं सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी की इस पेशकश से सहमत था कि नरक के द्वार सर्वथा बंद कर दिए जाएं और स्वर्ग के द्वार मुसलमानों और काफिरों अविश्वासियों के लिए समान रूप से खोल दिए जाएं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी सबका भला चाहते थे और वे मुसलमानों और हिंदुओं का भेद मिटा देना चाहते थे। दारा शिकोह ने अपना पक्ष रखा और हुजूर आलिया, मैंने देखा कि हिंदुस्तान का हर आदमी तौहीद का पैरोकार है। सूफीवाद के तौहीद और वैदिक धर्म के अद्वैतवाद में कहीं कोई फर्क नहीं है। तौहीद का मार्ग समझदारी, समन्वय और दया का है। ये तौहीद ही एकेश्वरवाद का महामार्ग है। लेकिन मैंने खुरासान के सबसे बड़े सूफी संत अबू सईद फजलुल्लाह के मुताबिक इस बात को भी मंजूर किया कि ईश्वर एक है, लेकिन उससे एकाकार होने के रास्ते सैकड़ों ही नहीं, लाखों और करोड़ों हैं। क्योंकि एकेश्वरवाद का हर पुजारी किस तरह अपने धर्म से एकात्म होना चाहता है, यह उसकी आजादी है। तौहीद है ही यही कि न तो वहां अपनेपन का अस्तित्व है और न ईश्वर के अलावा किसी और वस्तु का वजूद, यानी वस्तु और व्यक्ति खुद पिघलकर एक ईश्वर में समा जाते हैं। ये समझ लेने के बाद मेरी तृष्णगी दर तालाबे तौहीद बढ़ती ही गई। दो लाइनों में कहूं तो, जा कारण जग ढूंढिया सो तो घट मही माहि, पर्दा किया भरम का ताते सूझे नाही। ये तब भी पागल हो गया था और अब तक पागल है, शिबली नुमानी ने बीच में हस्तक्षेप किया। हां, हर वो शख्स जो एकत्व इत्तेहाद से होता हुआ संयोग के उन्माद संकुल जम की स्थिति हासिल करके आरोहण उरूज की सीढ़ी पर पहुंचकर तौहीद को प्राप्त करता है, वो शख्स उन्हें पागल ही दिखाई देता है जिनके पास आंखें नहीं है। इसीलिए तुम्हारे आलमगीर को सरमद भी पागल दिखाई दिया था, और उस यहूदी संत सरमद को इसी आलमगीर ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर कत्ल करवा दिया था।
पृष्ठ 184।
आज इस 20वीं सदी में औरंगजेब का वो पाकिस्तान नफरत की नींव पर खड़ा दिखाई देता है, और मेरा हिंदुस्तान उसी पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा मुसलमानों को अपना धरती पुत्र मानकर सहेजे हुए है और सामासिक संस्कृति की नींव पर खड़ा है। औरंगजेब के पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी मेरे हिंदुस्तान में है। दारा शिकोह कुछ तैश से बोल रहा था, इस्लाम बर्बर विजेताओं का धर्म नहीं, वो दुनिया को खूबसूरत बनाने वाले सह अस्तित्व वालों का धर्म है। पाक रसूल ने खुद मंजूर किया है कि उनसे पहले अल्लाह ने ईश्वर का रास्ता दिखाने के लिए और रसूलों को भी भेजा है। अब यह बातचीत बहस चल ही रही थी कि फलक पर छाए सतरंगी इंद्रधनुष एकाएक मिटने लगे और आसमान से खून की बरसात होने लगी। अफगानिस्तान की पथरीली वादियों और चट्टानी पठारों पर कलश्निकोव बंदूकों की भयानक आवाज तड़तड़ाने लगी। मासूम बाशिंदे तड़पने, कराहने और चीखने लगे। वही चीखें मध्य एशिया की छाती को चीरती हुई तुर्की तक पहुंची और अफ्रीका के सूडान से मिस्र होती हुई सऊदी अरब को हिलाने लगी और पाकिस्तान की सरजमी से होती हुई कश्मीर तक पहुंचकर और भी ज्यादा तबाही ढाने लगी। ये दरिंदे कौन हैं? अदीब ने खून की बारिश में लथपथ तमाम मुल्कों के मुर्दों को अपनी बाहों में लेते हुए पूछा तो पत्रकार निखिल चक्रवर्ती परेशान से भीतर आए। अदीब ने उठकर उनका स्वागत किया। अदीब, तुम्हें पता है कि आकाश पर छाए हुए इंद्रधनुष क्यों मिट गए? निखिल चक्रवर्ती ने परेशानी से पूछा। क्या तुम्हें यह पता है कि खून की बारिश क्यों हो रही है? तब तक देवास से प्रभु जोशी खून की बारिश में बर्बाद हो गई अपनी पेंटिंग्स लिए हुए तड़प कर बताने लगे। अदीब भाई साहब, मेरी इन पेंटिंग्स ने तो सौंदर्य का सृजन किया है। ये तो सभी देशों के सच की कलाकृतियां हैं। इस खून की बारिश को क्या अधिकार है कि ये मेरे सारे सृजन को मिटा दें? ए अदीब, ए कलाकार, निखिल चक्रवर्ती ने घायल आवाज में कहा। अफगानिस्तान से मध्य एशिया तक और इराक के कुर्दिश इलाकों पर से तुर्की, उत्तर अफ्रीका को घेरती मिस्र से सऊदी अरब तक ये जो रक्त की वर्षा हो रही है, ये उन मुजाहिदीनों के कारण है जो अफगानिस्तान से फारिग होकर नए युद्ध की तलाश में घूम रहे हैं, क्योंकि वे दिशाहीन सैनिक अब जिहाद के नए सीमांत खोज रहे हैं। वे मुजाहिदीन जो रूस के खिलाफ नायक थे, अब अफगानिस्तान के गृह युद्ध के साथ साथ नायक से खलनायक बने हुए हैं। यही इनकी नियति है। आज वे ही मुल्क इन कट्टर और अंधे मुजाहिदीनों का शिकार हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है।
पृष्ठ 185।
ये भस्मासुर वाली स्थिति है। हाँ, ये सही है। ये फंडामेंटलिस्ट जिन्हें खुद अरब मुल्कों ने अफगानिस्तान को आजाद करने के लिए जन्म दिया था, इनकी कारस्तानियों से अब परेशान है। ये बेकार हो गए मुजाहिदीन अब एक नए युद्ध की तलाश में भटक रहे हैं। इन युद्ध और रक्त पिपासु मुजाहिदीनों ने मिस्र, अल्जीरिया, जॉर्डन और ट्यूनिसिया में तहलका मचा रखा है। तभी वियतनाम के जंगलों से कुछ अमरीकी फौजी निकल कर आए। वे वनमानुष की तरह लग रहे थे और चीख रहे थे, युद्ध कहाँ है, युद्ध कहाँ है। वियतनाम युद्ध दशकों पहले समाप्त हो चुका है, प्रभु जोशी ने उन्हें समझाना चाहा। जैसे वियतनामियों ने तुम्हें जंगल में खदेड़ दिया था, वैसे ही उन्होंने तुम्हारी अमरीकी फौज को अपने देश भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया था। वे दशकों पहले परास्त होकर अपने देश जा चुके हैं। वियतनाम युद्ध समाप्त हो चुका है। नहीं, वे वनमानुष चीखे, युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि तुम उसे समाप्त होने नहीं देते। तुम्हारी राइफलें जंग लगने से कुंद हो गई हैं, तुम्हारी बंदूकों की नालियां और कुंदे जड़ हो गए हैं और उसी जड़ता में तुम्हारी बुद्धि कैद हो चुकी है। तुम युद्ध ही चाह सकते हो, युद्ध और विनाश। कुछ भी हो, हमें केवल युद्ध चाहिए। जो युद्ध में शामिल नहीं हो पाएंगे, वे अपने समाजों के लिए डकैत और हत्यारे बन जाएंगे। ए अदीब आलिया, आप हमारी मजबूरी क्यों नहीं समझते? हम युद्ध लोलुप रक्त पिपासु नहीं थे। हम भी इंसान की औलाद की तरह मासूम पैदा हुए थे, पर सत्ता और साम्राज्य की स्पर्धा ने हमें अपने हितों के लिए दरिंदों में बदल दिया है। हमें कोई और हुनर नहीं आता, हमें बस मौत का खेल खेलने का हुनर आता है। काश हमें कुछ और सिखाया गया होता तो हम भी खेत खलिहानों, कारखानों में काम कर रहे होते। कहते कहते एक अफगानी मुजाहिदीन रो पड़ा। उसके आंसुओं में जंगल से निकले अमरीकी फौजियों के आंसू भी घुल मिल गए। अब हम क्या करें, वे फौजी संवेद चीखे। हमारी नियत यही है कि हम लड़ते रहें। हम शापग्रस्त हैं अदीब आलिया, शापग्रस्त। हम मौत के सिवा किसी चीज को जन्म नहीं दे सकते। कहते हुए वे हजारों तालिबानी और अमरीकी सैनिक अमरीकी, चीनी और रूसी हथियारों को लिए हुए बोस्निया, सोमालिया, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिसिया की ओर दौड़ पड़े। मौत का अंधड़ चलने लगा, रक्त की नदी बहने लगी और उसी में तमाम खूनी धाराएं मिलने लगी।
पृष्ठ 186।
अल्जीरिया से इस्लामिक सॉल्वेंशन फ्रंट की, जॉर्डन से मोहम्मदी आर्मी की, ट्यूनिशिया से इस्लामिक पार्टी की, कश्मीर से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जेकेएलएफ जैसी दसियों तंजीमों की कोहराम मचा हुआ था। और वो कोहराम अदालत के अहाते से निकलकर दुनिया के मुसीबत ज़दा मुल्कों की ओर हल्ला बोलता हुआ चला गया। अदीब अपनी कनपटियां कचोट कर बैठ गया। तभी उसके कानों के बंद दरवाजों को भेदते हुए दारा शिकोह की आवाज आई, हुजूर आलिया, मैं अपने मुल्क को इन्हीं खूनी अंधड़ों से बचाना चाहता था। मेरा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब का केंद्र है। हमारी तहजीब ने लोहे और बारूद के भौतिक हथियार नहीं, आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक हथियारों का अन्वेषण किया था। हमने धर्मांत मुजाहिदीन पैदा नहीं किए, हमने पीर फकीर सूफी संत दरवेश और महात्मा पैदा किए। हमारे जंगलों से युद्ध युद्ध पुकारते दरिंदे नहीं, शांत शांत का संदेश देते साधु संत निकलते हैं। इसीलिए तख्त ताज से पहले मैंने इंसानी ईमान की तलाश की थी और तौहीद के उसी आलम में मैंने शाह दिलरुबा जैसे फकीर और संत को लिखा था कि मुझ जैसे फकीर के हृदय से इस्लाम के वाह्य अंग अब गायब हो गए हैं और सच्चा कुफ्र, सच्ची आस्तिकतावादी नास्तिकता मुझ में प्रकट हो गई है। मैं जनेऊधारी मूर्ति पूजक हो गया हूं, नहीं, मैं स्वयं अपना उपासक खुद परस्त हो गया हूं, क्योंकि हर मूर्ति में जीवन छुपा हुआ है और कुफ्र अविश्वास के नीचे विश्वास ईमान छिपा हुआ है। इस ईमान को मैं नहीं तोड़ सकता, तोड़ूंगा तो इंसान हर तरह के विश्वास और ईमान से रहित हो जाएगा। यह ईमान ही मनुष्य के अस्तित्व की कुंजी है, क्योंकि इसी ईमान के सहारे वो बहु को एक में पैबस्त पाता है। सच्चा मुसलमान यही देखता है, बहुत्व को एकत्व में देखना ही वही दिया है। यही तौहीद का फलसफा है, यही एकत्ववाद है। ईश्वर के नाम की एकता नहीं, वे नाम हमेशा अलग अलग रहेंगे, पर मजहबों में मौजूद एकत्ववाद के बारे में कोई भी मतभेद किसी मजहब में नहीं है। अभी दारा ये कह ही रहा था कि फिर तोपें गरजने लगीं, इमारतों की नींवें हिलने लगीं। प्रभु जोशी ने फौरन राजेंद्र माथुर को आवाज दी, आवाजें आने लगीं, अफगानिस्तान का गृहयुद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, जलालाबाद संधि बेकार हो गई है, अब यहां के खलनायक आपस में लड़कर यह तय करना चाहते हैं कि खलनायकों का खलनायक कौन है। कल रात से ये खलनायक एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और तभी से अफगानिस्तान के हर शहर की दीवारें थर्रा रही हैं। यहां की खूनी शतरंज के सारे मोहरे अपने पाले बदल चुके हैं।
पृष्ठ 187।
चारों तरफ से शेलिंग हो रही है, रॉकेट्स गिर रहे हैं, बमबारी लगातार जारी है। हर बस्ती की मासूम जनता अब